कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावत्सलाय बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे प्रणमामि हरि हा देवी का तू भरगत गदयाच जाते निपत्त भो विदंडवत उद्घटारती अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणिजननम् अङ्गश्यामलिन् छटाभिरभिते मन्दीकृतेन्दुजागुतरुचि संविदधतमपट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनम् सदिलसद्वामाभिरामोदम् राधा स्कंद जलभुज ध्यानाय पराधलक्ष कामिकरंगम कृपाईं शरण प्रपन्ना वंदे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताजन्मतमनुपेतमपेतपेत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मे तया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि मदीयामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे नाम शरणं आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद लीला महाप्रभु जी के गृह रहस्यपूर्ण वंशाओं का यहां पर विवरण दे रहे हैं कि महाप्रभु जी का अवतार का मुख्य कारण क्या है। उसमें से पहली वंशा दूसरी वंशा, पहली वंशा राधा जी की प्रणेलिनी है, दूसरी कृष्ण का की माधुरियां तीन प्रकार की माधुरी, चार प्रकार की माधुरी का आस्वादन और तीसरा आस्वादन करने के बाद में कैसा सुख होता है। कृष्ण इसको आस्वादन करना चाहते हैं, इतनी सभा पर नहीं होता, इसलिए राधा जी का भाव और माधुरी उन्होंने ग्रहण किया और तब कहीं आस्वादन कर सके। ये तीसरी माधुरी के संबंध में उसी के लिए बतला दीजिए सर्व दामोदर के अतिरिक्त दूसरे नहीं जानते, ये दूसरे जानते हैं तो सर्व दामोदर के द्वारा ही जानते हैं। उसी के लिए ये बतलाया अत्यंत पीछे करिए गोपीगंज प्रेम अभिरूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कहो नहीं काम। इसको बतलाते हुए मैंने कहा था कि चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं प्रेमैव गोपारामाणं काम इत्यवगमत प्रथम इति उद्भव आदयो अपि एतम वाचन्ति भगवत किया। गोपियों का प्रेम ही काम कहलाता है यथार्थ में। गोपियों का प्रेम साधारण लौकिक काम नहीं है, यदि होता तो उद्धव जैसे व्यक्ति, नारद जी जैसे व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि ये साधारण बद्ध जीव नहीं है, ये भावुक रसिक और मुक्त लोग हैं। नारद उद्धव जी कृष्ण के परिकर हैं, इसलिए वो ऐसा क्यों करते हैं? यदि दोनों यदि काम ही होता इसी के लिए वो बतला रहे हैं। कल हमने अधेरूर के भाव के संबंध में बतलाया था, पहले भी बतलाया जरूर किसको कहते हैं, पहले अनुराग, अनुराग के बाद में महाभाव, महाभाव के बाद में रूढ़ और अधिरूढ़ बतलाया। ये अधिरूढ़ भाव कृष्ण की राधा जी की केवल ललिता विशाखा इत्यादि सत्य में ही होता है और दूसरे में नहीं होता है। महाभाव जो रूढ़ है इसमें प्रेम वैचित्र इत्यादि जो है ये द्वारका के महर्षियों में भी देखा जा सकता है, दूसरों में भी देखा जा सकता है, किंतु अधिरूढ़ राधिका जी के स्वयं यही अधिरूढ़ जब बढ़ करके और ऊपर चला जाता है मोहन मोदन और मादन, वो कई मादन श्रीमती राधिका जी में होता है, ये दूसरे किसी में नहीं देखा जाता। इसलिए हम बतला रहे हैं अब जो प्रेम का तात्पर्य क्या हमने बतलाया, प्रेम में ये प्रीति से होता है, प्रीति प्रीति माने प्री, प्री इसका असल धातु है, प्रीति माने क्या, प्रीति माने होता है इच्छा कामना, सुख की कामना, और काम में भी उसे कम धातु से इसमें भी होता है इच्छा, प्रेम सुख की इच्छा, दोनों का दोनों शब्दों का काम और प्रति दोनों का एक ही अर्थ होने पर भी लौकिक दृष्टि से एक है अपने लिए काम अपने लिए सुख और दूसरा है कृष्ण के लिए सुख। प्रीति प्रेम प्रियता ये सब कृष्ण की प्रीति के लिए कृष्ण के सुख के लिए होते हैं और काम वासना ये सब अपने सुख के लिए होता है। प्रेमैव गोपाराम यहां पर अब वो बतला रहे हैं गोपियों का प्रेम ही काम कहलाता है, जगत का काम ये लौकिक काम, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। इसमें से काम जो अपने लिए होता है ये माया की वृत्ति है जो मन के रूप में उभरता है, ये मन में आता है, मन ये माया की वृत्ति है और वो मन में जो आता है अप्राकृत भाव वो सर्वशक्ति की वृत्ति है। सर्वशक्ति की वृत्ति होने के कारण स्वरूप शक्ति जहां से निकलती है वहां ले जाती है, कहां से निकलती है कृष्ण से, इसलिए कृष्ण तक वो पहुंचाएगी। अब मन की वृत्ति होती है सांसारिक वासनाओं से मन की वृत्ति, ये माया की, ये माया की तरफ में अर्थात भोग विलास विषय इसके तरफ, दोनों ही सुख है, एक है कृष्ण का सुख और एक है अपना सुख। अब इसी को कहने के बाद में वो बतला रहे हैं काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण, काम और प्रेम का दोनों का अलग अलग लक्षण है। लोह आर हेम जैसे स्वरूप है विलक्षण, तो फिर काम और प्रेम में समता कहां है, जिसे लोग प्रेम को ही काम कहते हैं या काम को प्रेम कहते हैं, क्यों कुछ समता तो होनी चाहिए, समानता समता कहां है, प्रेम क्रीड़ा और काम क्रीड़ा में दोनों में कुछ समता है, तटस्थ हो या जैसे भी हो, काम क्रीड़ा जो होती है या प्रेम की क्रीड़ा होती है उन दोनों में क्रीड़ा की समता से, जैसे कृष्ण चल रहे हैं एक बद्ध जीव भी चल रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा भी चल रहा है, चलने की दृष्टि से सब चल रहे हैं, किंतु कृष्ण का चलना और जीव का चलना ये दोनों एक नहीं है। कृष्ण का भी शरीर है और और कीड़ा मकोड़ा और हम लोगों का भी शरीर है, तो दोनों एक हो जाएगा। इसी तरह से कीड़ा अतः गोपियों ने रास किया, हाथ में हाथ लगा करके रास किया, और तरह तरह की भावभंगी गोपियां कर रही हैं, कृष्ण भी कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। उसमें देवताओं की स्त्रियां भी उनको देकर के मुग्ध होकर के अपने पति के गोद में गिर जाती हैं। यह भाव दोनों में, कृष्ण भी जो खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, भाव दिखला रहे हैं, वो कीड़ा और उन मनुष्यों की जो साधारण मनुष्यों की कीड़ा एक ही समय। जैसे चेतन में की देतसी तरुतलेश प्रियहते, हमारा मन देव के बन में कौन नदी बेतसा रेवा नदी के तट पर कदम्ब कानन के पास ही में जो बेत का बन है, या बेत के बन के पास में जो कदम्ब कानन है, उसकी भीनी भीनी सुगंध से चारों तरफ प्रकृति खूब सुगंधित हो रही, कोई नहीं है वहां, नदी की कलकल धारा वहां पर प्रवाहित हो रही, बसंत ऋतु है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, मयूर भी नाच रहे हैं, सारी प्रकृति नाच रही है, और हम और तुम दोनों वहां पर हैं। विवाह शादी नहीं हुई है, प्रथम मिलन हम लोगों का हो रहा है, बड़ा आनंद के साथ में, बड़े आनंद के साथ में हम लोगों का जो प्रेम प्रणय होता है, और मुझे याद आती है तुम वही हो, मैं भी वही हूं। अब हम लोग आलिशाल बिल्डिंग में हैं, वैभव से जो तुम पति हो, मैं घर में सास ससुर और वैभव है, किंतु यहां मेरा मन नहीं लगता, अब कोई हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं है, ने? कोई भी बाधा नहीं है, स्वच्छंदता से हम लोग मिल सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं, और उस समय हम छिप करके मिले थे, बड़ी उत्कंठा मिलन की थी, उसमें न जाने कौन सा एक सुख था। अच्छा, अब हम लोग का मिलन हुआ, घर में हम हैं, किंतु अब इसमें घर में मिलन में रुचि नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु वहां के लिए मन छटपटा रहा है। अब इसी को चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, रूप गोस्वामी सुन रहे हैं, रूप गोस्वामी ने एक और ऐसा ही परलल श्लोक लिखा, वही तुम कृष्ण हो नायक, और मैं वही आपकी प्रिया हूं। वृंदावन के लिए मन मचल रहा, यहां पर जमुना कलकल रूप से प्रवाहित हो रही है, उसके कमलों पर भ्रमर गुंजार कर हैं, बसंत वही ऋतु, वही बसंत ऋतु, किंतु अब हम दोनों मिले हैं, यहां पर हाथी घोड़ा वैभव और हजारों 16,000 महिषियां पुत्र कलत्र और अर्जुन द्रौपदी और सब कितने सब वहां पर हैं। इस मिलन में हमें आनंद ने कृपा करके वृंदावन में, हमारे हृदय में रूपी वृंदावन में आप अपने चरणों को उदित कराएं, तब कहीं जाकर के आनंद हो सकता है। दोनों में क्षमता हुई कि नहीं, कहा एक काव्य अलंकार, भौतिक अलंकार काव्य का एक वे श्लोक, अकार रूप गोस्वामी का श्लोक, दोनों एक होगा, एक नरक में ले जाएगा और एक कहां ले जाएगा, बैकुंठ वृंदावन में गोलोक में ले जाएगा, दोनों एक नहीं है। इसलिए यहां पर काम क्रीड़ा में दोनों का मिलना जो वहां वहां पर एक समान, यहां पर मिलना भी एक समान है, किंतु दोनों एक नहीं है। इसी के लिए ये बतला रहे हैं, काम क्रीड़ा के समान समता होने पर भी काम और प्रेम दोनों का लक्षण भिन्न है। लक्षण किसको कहते हैं, जिसके द्वारा किसी निर्दिष्ट वस्तु का स्वरूप समझा जाता है, उसको कहते हैं लक्षण। अब खूब गर्मी है, खूब गर्मी है, लू चल रहा है, जेठ की दुपहरी है, चिलचिलाती हुई धूप है, और हिरण ने देखा एकदम लबालब समुद्र में पानी भर रहा है, उसमें पानी की हिलोरें चल रही है, उसने देखा है वहां
वहां नहीं है, फिर जो देख रहा है ये पानी के समान जो भी लोरे उठ रहा है उसमें, ये सब लक्षण के द्वारा वो देख रहा है जैसे ये तो पानी ही है, किंतु वो लक्षण गलत है। इसलिए यहां पर विचार करें, किसी वस्तु को समझने के लिए उसका स्वरूप लक्षण और तत्व लक्षण दोनों चाहिए, दोनों में से एक नहीं रहेगा तो वो पूरा नहीं होगा, दोनों चाहिए। जैसे भक्ति को हम डिफाइन जब करते हैं, भक्ति को जब हम या परिभाषित करते हैं, तो भक्ति का स्वरूप लक्षण भी चाहिए और तटस्थ भी लक्षण चाहिए। स्वरूप लक्षण मिलता है किंतु तटस्थ लक्षण नहीं मिलता तो वो भक्ति सिद्ध नहीं होगी, है केवल तटस्थ लक्षण मिलता है, स्वरूप लक्षण नहीं मिलता तो एकदम भक्ति ही नहीं। और स्वरूप लक्षण मिलता है और तटस्थ लक्षण कुछ नहीं मिलते तो भी वो भक्ति रहेगी किंतु शुद्ध नहीं, किंतु स्वरूप ही लक्षण नहीं है केवल तटस्थ लक्षण है तो वो भक्ति एकदम नहीं होगी, उसी को कहते हैं छाया। और दूसरी वाली है आभास, आभास अभिभक्ति नहीं है, तटस्थ लक्षण भी होना चाहिए। इसलिए यहां पर बतला रहे हैं किसी वस्तु को जानने के लिए जिस वस्तु के द्वारा जिन लक्षणों से जिसके द्वारा वस्तु को जाना जाता है उसको कहते हैं लक्षण। अब लक्षण दो प्रकार के, एक स्वरूप और एक तटस्थ लक्षण। आकृति प्रकृति और उपादान के द्वारा स्वरूप लक्षण का परिचय पाया जाता है। जैसे मनुष्य दो हाथ नाक कान पैर यह होना चाहिए, यह हुआ आकृति। प्रकृति मैंने स्वभाव, स्वभाव भी मनुष्य का होना चाहिए और उपादान कारण भी होना चाहिए। उपादान माने ये मिट्टी जल वायु इत्यादि से यह बना है ने? घड़ा, घड़ा में मिट्टी जरूर रहेगी, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रहेगा। जिसमें पानी भरा जाए और टूट ना जाए उसको पका करके किया गया, इस तरह से सब सब उपलक्षण है। और जो पानी भरना इत्यादि कार्य है, कार्य के द्वारा जो समझा जाता है वस्तु को उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। उसके कार्य के द्वारा किसी वस्तु को जो समझा जाता है ये तटस्थ लक्षण है। और आकृति प्रकृति और उपादान के द्वारा इसको समझा जाएगा ये होगा स्वरूप लक्षण। अब इसको इस पर लगाना है जैसे नमक और मिश्री है, शुद्ध एकदम साफ नमक का ढेला और मिश्री का ढेला रख दो, नहीं आप समझ सकते हैं कौन मिश्री है और कौन नमक है और कौन मिश्री है, समझ लेंगे देख करके। आकृति प्रकृति तो एक है, आकृति दोनों की एक है, स्वरूप लक्षण न मिल रहा आकृति है,
तटस्थ मिल रहा
नहीं, स्वरूप लक्षण नहीं मिल रहा। जब उसको कार्य आता तो जब वो मुख में डालेंगे नहीं, ये कार्य हुआ जब लगेगा कैसा, एक नमकीन और एक मीठा, ये तटस्थ लक्षण। आस्वादन रूपी कार्य, आस्वादन कार्य है, वस्तु है उसमें, तो उसी तरह से आप इन सब को वहां पर लेकर के लगा करके देखना चाहिए। काम और प्रेम का अब जो लक्षण कहते हैं, जो काम और प्रेम दोनों का जो भिन्न लक्षण, उसका स्वरूप लक्षण भी अलग है दोनों का, और दोनों का तत्व लक्षण भी दोनों का है अलग। जैसे लोहा और सोना, लोहा किस चीज से बनता है, उपादान कारण क्या है, और सोना का उपादान कारण क्या है, हैं? नहीं ये देख रहे हैं दोनों एक चीज धातु नहीं है, एक बहुत कीमती चीज है। लौकिक दृष्टि से जबकि तत्व का विचार करेंगे तो लौकिक जितनी चीजें हैं उसमें कोई भेद ही नहीं, सब तो ये क्षित जल पाव गगन समझा। यहां पर वहां पर दूध भी भौतिक चीज है और विष भी भौतिक चीज है, तो दोनों एक हो जाएगा, उसी तरह से यहां पर विचार कर रहे हैं। काम और प्रेम का ये अलग अलग स्वरूप और तटस्थ लक्षण अलग दिखलाने के लिए ये बतला रहे हैं कि दोनों के तटस्थ और स्वरूप लक्षण भी भिन्न भिन्न है। आकृति प्रकृति भी नहीं मिलती, उपादान भी नहीं मिलता और उसका जो कार्य होता है वो भी नहीं मिलता। सोना आप समझे और न समझे, उसको धारण करेंगे तो उसके परमाणु सब शरीर में जाते हैं और उसमें शक्ति और उसमें सौंदर्य और सब चीजें उसमें आ जाती हैं। वो धातु का प्रभाव है, लोहा को धारण करने से नहीं। लोग सोने की थाल में खाते थे, आभूषण पहनते थे, किस लिए? किस लिए कीमती? शरीर के लिए उपकारी थे। पढ़ने से ही एक तो शरीर में बल आएगा, जिसे कोई विपत्ति आने पर उसको तोड़वा करके और इससे अब अपना काम कर लेंगे, रह जाते ही बल। कुछ भी नहीं रहने से सोने की अंगूठी हम विदेश में जा रहे हैं, नहीं कुछ हुआ उसको बेच करके अपना हम सब कुछ कर लेंगे। लोहा के द्वारा होगा ये नहीं। इस सब उपकारिता के ऊपर में उसका मूल्य रखा गया, तो वो शरीर के सौंदर्य को, शक्ति को, मूल्य को ये बढ़ाता है, निरोग भी रखता है, इसलिए इसको सब लोग पहनते हैं और समय समय पर ये काम देगा। तो इसमें लोहा और सोना दोनों के स्वरूप लक्षण में भी अंतर है, कार्य में भी अंतर है। सोना चमकीला होता है और वो भी वो कैसा होता है, उसे जंग लग जाएगा कुछ दिनों के बाद में। सोना का खाय नहीं होता, लोहा का खाय हो सकता है, उसमें धातु वो फिर गल फल करके खत्म हो सकती है कुछ दिनों में, जंग बहुत शीघ्र ही लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। इसलिए जिस चीज से सोना बना है लोहा उस चीज से नहीं, इसलिए इसमें स्वरूप लक्षण है। और प्रेम को देखो, प्रेम चीज का स्वरूप लक्षण क्या है, किस चीज से बना? धातु से। माने उपादान क्या है? स्वरूप शक्ति की लाजनी और संबित वृत्ति से ये बना है ना? ऐसा कार्य क्या है? कृष्ण को सुख देना, स्वरूप शक्ति का यही कार्य है। इसलिए जिसमें प्रेम होगा वो जरूर कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सब समय सुख का विचार करेगा, कृष्ण को सुख देने की प्रवृत्ति होगी। इसीलिए गोपियों में ये प्रेम रहने से सब समय कृष्ण को सुख देने की इच्छा। किंतु इसमें ऐसा एक चीज है, नई इच्छा करने पर भी कोटि गुण सुख अधिक होता है, होगा ही, वो होगा ही सुख। और दूसरी तरफ में ये काम कहां से बना? माया से। कैसे ये माया से बना? पूर्व जन्म के संस्कार में, विषयों के संग से, जो माइक वस्तुएं हैं उनके संग से ये माइक कामना बनी, उस माइक कामना से ये माइक काम बना। इसमें किस लिए ये काम होगा, इसका कार्य क्या होगा? सब समय माया के वस्तुओं की तरफ में ये दौड़ेगा। जिसके अंदर में कामना वासना है जरूर विषयों की तरफ में जाएगा। जब कभी ये कामना नष्ट हो जाए और स्वरूप शक्ति की वृत्ति इसमें आए, आगे कहां से? श्रद्धा से। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तब इस चीजों को छोड़ करके भगवान की तरफ हो लगेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए जब तक काम है, काम की कोई उद्दीपना होने से ही बस भक्ति भी धरी रह जाती है, जो थोड़ी सी अभी हो रही थी प्रारंभ में, प्राथमिक स्थिति में वो कुछ काम नहीं करती। नारद जी को पागल बना दिया, शंकर जी को नग्न दौड़ा दिया माया के पीछे पीछे, विश्वामित्र की तपस्या और ज्ञान विवेक बुद्धि सब रह गया। सौधरी जी देखते रह गए 10,000 वर्ष का साधन, एक सेकंड का ऊपर में न जाने कहां चला गया। दूसरी तरफ देखिए हरिदास ठाकुर के सामने अर्धनग्न अवस्था में पेशिया खड़ी रही, हरे कृष्णा आंख बंद करके करते रह गए। किंतु इनका अनुकरण हम लोग करने जाएंगे तो मरेंगे, क्योंकि हम अभी प्राथमिक स्टेज में है, हम अभी ऊपर के स्टेज में नहीं गए, इसलिए खूब सावधानी के साथ में चलना पड़े। इसलिए काम का थोड़ा सा भी यदि अनुसरा हृदय में, काम माने क्या है, विषयों की भोग की लालसा, केवल एक ही नहीं सभी प्रकार की भोगों की लालसा, सौंदर्य है, स्वर है, आंखों से रूप है, जीव से टेस्ट है, शरीर से स्पर्श है, ये सभी चीजें इसमें बतलाई गई, ये सभी की कामना है। ये काम होने से काम ऐसा क्रोध है, इसके बाद में क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात आत्म विस्मृति, आत्म बुद्धिनाशा, अबुद्धिनाशात विवेक नहीं काम करता, अजामिल का विवेक काम नहीं कर सका, ब्राह्मण ग्रहण करके वेद अध्ययन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला था, विवेक काम नहीं, भ्रष्ट हो गई ना, इसलिए कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए सत्संग में यदि सत्संग में रहा जाए, भक्ति का आश्रय लिया जाए, तो किसी तरह से हम लोग इस संसार में बच सकते। काम बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर, इसी के पांच रूप हैं, रूप रस गंध शब्द, इसी के पास, और यही जीव को बद्ध दशा में लेकर के संसार में भुगाता है। इसलिए जिस यदि भावावस्था तक अभी आतंतिक अर्थों की अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, तब तक मुक्तापी
संसार
क्या है, मुक्तापी
संसार
भी यदि मुक्ता मानी यहां पर भावावस्था में गए हुए लोग भी यदि भरत महाराज की तरफ में भावावस्था में पहुंच गए थे, और उसमें भी कामना हुई इस शिशु बच्चे की रक्षा करें, प्राकृत भगवत भजन छूट गया, उसमें आसक्त हो गए, तो यदि ये काम रहा तब तो मैंने स्त्री पुरुष वाला काम रहा तब मैं जिन्हें क्या ले जाएगा, वही जब तीन जन्म में उनको भाव अवस्था से लेकर के गिरा दिया, कितना भयंकर है। हम कहते मन की गति भी रोकी जा सकती है, किंतु काम की गति रोकना और भी कठिन है। वैसे मन और काम एक ही है, एक वृत्ति है काम। इसलिए जहां तक ये काम है, अतः जिस समय में निष्ठा होती है तो बहुत दूर तक अनर्थ दूर हो गए होते हैं, कि एक देशीय शायद एक देश बढ़ते एक देशीय उसका वो सब दूर हो जाता है, और जहां रुचि और आसक्ति हुई तो बहुत देश उसका अनर्थ दूर हो जाता है। आसक्ति से जब भाव होता है तब थोड़ा सा रह जाता है, बहुत कुछ अब उसका गंध रहता है प्राई की, और प्रेम होने पर आतंत की, और आतंत की कब होगा, जब कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तब, तब होगा भाई। इसलिए इस शरीर में प्रेम नहीं, इसलिए दोनों का पार्थक्य समझना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं आत्मेन्द्रिय प्रति इच्छा बड़े तारे काम, माया की जो वृत्ति है अपने इंद्रियों के सुख के लिए जो कुछ भी इच्छा होती है वो है काम। मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं अलंकारों से सौंदर्य को बढ़ाऊंगा, जितने प्रकार की अपने सुख की वृत्ति है, मैं कृष्ण का दर्शन पाकर के दुखों से दूर हो जाऊंगा और मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये भी गोपी कामना है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण को पंखा जल रही और कृष्ण को दर्शन करके आनंद का ज्वार उठा और पंखा गिर गया, हाय हाय करने लगी, अपने को धिकार। ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि कुआ नहीं है गोपियों में तभी वो दिखला रही है, प्रेम से विवश होकर के उस सेवा को छोड़ देना भी ये कामना के अंतर्गत में ले लिया है। कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा, ये कहां तो सब में सबसे अधिक है, गोपियों में अधिक है। कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, कामना तात्पर्य यानी कि संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम तो प्रबल। काम का तात्पर्य क्या है, क्योंकि ये माइक वृत्ति होने की वजह से संसार में लगेगी, अपने सुखों की तरफ में लगेगी। और कृष्ण सुख तात्पर्य ये किससे है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति होने के कारण प्रेम का प्रबल, वो प्रबल होता है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धर्म, देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुष्ट आज पद निज परिजन, स्वजने करे जतो तान भसन, सब त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम। अब वहां पर बतलाया जैसे एक वो माई वृत्ति है, उपादान कारण बतलाया नहीं, और इसका उपादान बतलाया क्या है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति। प्रकृति उसकी कैसी है, कृष्ण सुख देने की प्रवृत्ति उसमें है, और इसमें है अपने सुख भोग की, ये हुआ दोनों स्वरूप लक्षण। अब बतला रहे हैं तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण में ये बतला रहे हैं लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धर्ज, देह सुख, आत्म सुख मर्म। लोक धर्म क्या, लोक धर्म का जो हम आचरण करते हैं, लोक धर्म कहते हैं किसको, संसार में वास करने पर, एक साथ में निवास करने पर, समाज के लोगों के साथ में हम रह रहे हैं, लोक के लोक समाज में हम लोग रहते हैं, उस समय में लोक के साथ में आचार और व्यवहार, लोकाचार, लोकाचार माने क्या है, मर गए तब, जब मर गए तो आसपास के समाज के लोग हमारे घर में आएंगे, सांत्वना देंगे और घाट तक उसे ले जाएंगे और उसका अग्नि संस्कार कराएंगे, और फिर वहां से आकर के जो लोकाचार है उसके अनुसार में कुछ दिन उसके साथ में रहेंगे, और 12-13 दिन के बाद में एक साथ में रह करके और उसका अंतिम संस्कार इत्यादि, जो श्राद्ध इत्यादि होता है, समाज के सब प्रकार के लोग आकर के और वहां पर प्रसाद पाएंगे और एक साथ में रहेंगे, जिससे वो धीरे धीरे भूल जाए। तो ये लोकाचार आप यदि नहीं करेंगे तो आपके घर में कोई आएगा, कोई भी मर रह गया आप जाएंगे नहीं, बड़ा घृणा की बात है, आप जाएंगे नहीं, तो आपके घर आएगा तो आपके घर में मर गया कोई और उठाने वाला नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे, आपकी मैया मर गई है और आप दूसरों के मैया के मरने के या पिता के मरने पर उस समय नहीं जाते हैं तो वो आएंगे, आप मठ में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आपको कोई एक आपके घर में या समाज में कोई बीमार होता है, आप बड़ी दयालुता के साथ उसके घर में जाते हैं, उसे देखते हैं, सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, उसकी सेवा करता है, पानी देते हैं, पैर में दर्द हो रहा है पैर दबा दिया, सिर में दर्द हो रहा है डॉक्टर को ला दिया, ये सब होता है ना परस्पर एक मठ में भी रहने पर। आप किसी के बीमारी में किसी की भी कोई बात हो आप न जाए, मत पूछिए एक आदमी तड़फड़ा रहा है आप मत जाइए, मैं जाऊंगा तुम कैसा है ठीक है, औषधि की व्यवस्था किया, या ब्रह्मचारी लोगों में से दो एक हैं वो जा रहे, और किसी को मालूम ही नहीं जो कि बीमार, अच्छा वो लड़का कहां है तो मैं तो नहीं जानता जो कहां, अरे वो 5 दिन से नहीं दिखता है तो मुझको तो पता नहीं, मुझको पता नहीं, अरे भाई वो बीमार पड़ा है उसको प्यार पानी नहीं देगा तुमको तो पता ही नहीं कहां है, तुम्हारे पास कोई आएगा तुम जब बीमार पड़ेगा कह जाओ हम मठ वाले कोई भी नहीं हमको देख रहे हैं महाराज जी कोई नहीं हो, दूसरे आदमी से कहेगा कहे हम हमारी कुछ सेवा कर दो, कोई नहीं देखता है, मठ वाले ऐसे ही है, निर्मोह निष्ठुर है। तो ये सामाजिक क्रियाएं हैं, तुम सबके लिए करेगा, वो तुम्हारे लिए करेंगे। और ये आशा करो जो मैं किसी को नहीं देखता, किसी से कोई सरोकार नहीं है, मुझे यदि कुछ हो गया तो सब लोग आकर के मेरी सेवा करें। ये तो उचित तो नहीं, ऐसा ही होता है कभी कभी, उस समय मन खराब हो जाता है। बाहर के लोग कहते हैं अरे सचमुच में महाराज जी मंगल महाराज जी कह रहे हैं या कोई ये ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि हमारे को कोई नहीं देखता है, तो देखेगा कैसे, तुम्हारा व्यवहार ही नहीं देखता तुमको। इसको कहते हैं लोकाचार। लोक समाज में रहने पर परस्पर सौहार्द होना चाहिए, सौहार्द माने क्या है, सुहृद भाव प्रति रहनी चाहिए। वो हमारे घर में आते हैं, विवाह शादी मरण जीवन लाभ हानि इत्यादि में सब आते हैं और हमारी सांत्वना देते हैं, हम भी उनके यहां जाते हैं, ये लोकाचार है। ये सब इसी को कहते हैं लोक व्यवहार या लोक धर्म। हमारे सुख दुख में वो रहेंगे, हम उनके सुख दुख में रहेंगे। किस लिए? परस्पर सहायता और सुविधा के लिए। ये हमारे ऋषियों ने ऐसा बनाया है। यदि हम लोग यह नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता और ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, ये सब क्या चीज है, किस लिए करते हैं? यदि हम उनके लिए उसमें करेंगे तो ये लोग भी हमारे सुख के लिए करेंगे, इसलिए अपने लिए कर रहे हैं। बगीचा लगाना चाहिए, कुआं खुदवाना चाहिए, तालाब बनाना चाहिए, घाट निर्माण करना चाहिए, अंधकार में दीपक रखना चाहिए, किस लिए? इस लोक में या परलोक में ये सब चीजें हमको हमारे लिए मिले। मूल में वही चीज है, बगीचा किस लिए लगाते हैं? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। किंतु हम यही जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सबसे अपना चाहता है किंतु अपने किसी काम में नहीं जाता। लोक समाज में ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है, उनकी कोई सहायता नहीं करता है, इसलिए लोक व्यवहार लोक धर्म। लोक धर्म किस लिए है? अपने लिए। ये तटस्थ लक्षण हुआ, इसको दूर करना चाहिए। जहां पर प्रेम रहेगा ये नहीं रहेगा, और जहां पर प्रेम नहीं रहेगा काम रहेगा ये जरूर रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। गोपियों ने क्या किया, इस लोक धर्म को भी यहां तक अपने बेटे से, अपने ससुर से, अपने पति से भी, पति को परवेशन करने चल पड़ी, कोई पति को खिला रही है, रोटी बना रही है, दूध दो रही है, यहां तक कि अपना श्रृंगार कर रही है वो भी छोड़ दिया। ऐसा होना होगा तब तक ये विशुद्ध प्रेम होगा। वेद धर्म, वेद धर्म को छोड़ दिया गोपियों ने। वेद धर्म क्या है? यज्ञ अनुष्ठान करना, वेद वही जो कार्य है, माता पिता की सेवा करना, ये वेद में लिखा है। पति के साथ में, जिस पति के साथ में शादी हो जाए, लंगड़ा लूला काना गरीब निर्धन भी हो तो उसको नहीं छोड़ना है, उसकी सेवा करनी है, ये सब आर्य धर्म है। खुदा पिपासा, ये सब देह धर्म है, ये देह धर्म है। देह का ये कर्म क्या है? देह धर्म में दातुन करना, सवेरे उठना, स्नान करना, अपना अन्नी की इत्यादि करना, कुछ दंड कसरत करना भी, और कुछ पढ़ना लिखना, इसके बाद अपने रोजगार में काम में लग जाना, फिर वहां से आकर के थोड़ा सा विश्राम करके खा पी करके इसको भी विश्राम देना है, और कुछ चिंतन भी करना है, फिर अपने लोगों से मिलना, ये सब देह धर्म है, खाना पीना इत्यादि सब। गोपियों ने अपना शारीरिक कर्म भी छोड़ दिया कृष्ण के लिए, खा रही थी छोड़ दिया, श्रृंगार इत्यादि करना यह देह का धर्म है, ये भी छोड़ दिया। खुदा पिपासा इत्यादि ये धर्म है। ये खुद पिपासा इत्यादि देह धर्म और वेद धर्म किसके लिए है? अपने शरीर के लिए। वेद धर्म पालन नहीं करेंगे, आप यज्ञ नहीं करेंगे। यज्ञ किसको कहते हैं? देवताओं की प्रसन्नता का कार्य यज्ञ कहलाता है। और विष्णु यज्ञ किस कैसा होता है? विष्णु के प्रीति के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं विष्णु यज्ञ, विष्णु के प्रीति के लिए। तो यहां पर कहते हैं कि हम वेद धर्म पालन करते हैं, यदि मुख ना धोएं तो सत्य नहीं बोले तो क्या होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि हम दिन रात यदि वेदों के आदेश मान करके, वेद में लिखा खाना पीना सोना ये सब नियमित रूप में होना चाहिए, क्या है गीता में युक्तहार विहारस्थ युक्त कर्मसु जोगो भवती दुख, जो अत्यंत दुखपूर्ण योग है वो भी सुखकर हो जाते हैं यदि नियमित रूप में इनका पालन किया जाए। नहीं तो शरीर से भी दुखी रहोगे, मन से भी दुखी रहोगे, रोग हो जाएगा और सब चीजें हो जाएंगी, सुखी नहीं रह सकते। इसलिए इसका मूल भी ये क्या है, अपने सुख के लिए लज्जा। कुकियों ने लज्जा भी छोड़ दी। लज्जा किसको कहते हैं, अपने कुकर्मों के लिए, अपने किसी कार्य के लिए जो लज्जा होती है। लज्जा तो अपनी है, भगवान के लिए लज्जा हो रही है, यह लज्जा भी वैसे ही लज्जा भी रखनी चाहिए। लज्जा एक सौंदर्य भी है महिलाओं के लिए, अच्छा पुरुषों के लिए भी, अपनी प्रतिष्ठा सुन करके उनको लज्जा होनी चाहिए, नहीं हमारी प्रतिष्ठा इस पर नहीं है, यह तो गुरु वर्गों की है। किसी कोई खराब काम करने पर लज्जा होनी चाहिए, अब फिर से नहीं करूंगा, इस तरह से ये भी अपने सुख के लिए है। यदि नहीं होगा तो समाज में बड़ी निंदा होगी, यदि बुरे कर्मों से लज्जा नहीं करेंगे। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे, तो वो रोटी टोटी नहीं खाते थे, चावल नहीं खाते, जब किंतु बैठेंगे लोगों के साथ में तो चावल और रोटी या पूरी कचौड़ी नहीं लेते थे, बस थोड़ा सा ले लेते। आज जब परमान आएगा ना तो 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, वो मानेंगे नहीं। जितने भी आएंगे जरूर लेगा, तो उनके पास में जो बैठे रहते हैं ना उनको बड़ी लज्जा, किंतु उनको लज्जा ही नहीं आती थी। हमने देखा है उनको, उनके साथ में बोल, इसलिए उनके साथ में हम लोग बैठते नहीं थे। लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं, तो लज्जा तो होनी चाहिए ना, ये अपने लिए भी चाहिए, ये सब अपने लिए है। ये सब गोपी ने छोड़ दिया, ये लज्जा भी सब छोड़ दिया। अपने पति को छोड़ना ये लज्जा की बात है, देह धर्म छोड़ना भी लज्जा की बात है, वेद धर्म छोड़ना भी लज्जा, ये इसको भी छोड़ देना है। गोपियों ने सब कुछ, ये देखो लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य को भी छोड़ दिया। धैर्य किस लिए होता है, सुख और दुख में यदि धैर्य नहीं धरो, अभी 1 लाख की लॉटरी आ गई, अब तो नहीं किंतु पहले सुनता था जब किसी को लॉटरी आ गई तो वो जहां खबर सुना बस मर जाए, ऐसी आराम हो गए। अरे धैर्य धारण करना चाहिए ना, तो धैर्य तो है नहीं, अब थोड़ा सा दुख आ गया बस गंगा में कूद पड़े, यमुना में कूद पड़े, रेलवे लाइन से कट करके मर गए, ये तो अभी भी दिख रहे हैं। धैर्य धारण करिए, लोक में परलोक के कामों के लिए, भक्ति के लिए भी धैर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक है, धैर्य भी धारण करो। गोपियों ने इस धैर्य को भी, यह भी लौकिक चीज है, गोपियों ने इसको भी धैर्य छोड़ दिया। जहां कृष्ण का बंसी वादन वो सुना, स्वर सुना और बस, इस धैर्य को भी छोड़ दिया। राधिका जी के धैर्य, लज्जा इत्यादि के पर्वत को कौन चूर्ण कर सकता है, कौन, एक कृष्ण और हाँ मदमत्त जो कृष्ण है प्रेम के, उनको बांधने के लिए कौन श्रृंखला के समान है, का माने श्रीमती राधिका। इसलिए धैर्य धैर्य सब लज्जा इत्यादि का छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है, स्त्रियां सब कुछ छोड़ देंगे, लज्जा नहीं छोड़ सकती हैं, आग में खुद करके मर जाएंगी, वो राजस्थान में सब सुना, एक साथ में सामूहिक जौहर धर्म उन्होंने जौहर व्रत ग्रहण किया, किंतु ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते, लज्जा नहीं छोड़ सकती। यदि धैर्य नहीं छूटे, कोई निंदा इत्यादि जो काम हुआ उसमें धैर्य रखे हैं, लाख लोग उसको धिक्कार दे रहे हैं, किंतु धैर्य धारण करके है, वो हिमालय पर्वत तस्से मस नहीं होगा, चाहे लाख जगत के लोग उसको धिक्कार दें, चाहे जो कुछ करें, मारे काटे, ये क्या चीज लोक धर्म इत्यादि के लिए ये सब धैर्य धारण करना जरूरी है, किंतु इसमें धैर्य धारण करना तो और गंदा हुआ, बुरे बातों के लिए तरह तरह की विपत्तियां आ सकती हैं, फिर भी धैर्य धारण किया। यदि गोपियां जानती हैं कृष्ण की बंसी बजी, हम जाएंगे, जाएंगी कृष्ण के पास में, तो हमारा लोक धर्म नष्ट हुआ, आर्य धर्म भी नष्ट हुआ, लोग निंदा करेंगे, घर में घुसने नहीं देंगे, पति सास माता पिता कोई भी ग्रहण नहीं, ये सब चीजें उसमें रहेंगी। लज्जा और धैर्य, निज सुख, लोक धर्म, वेद धर्म सबका पालन करेगा, ये काम का तात्पर्य। अप्रेम का इसका ठीक विपरीत, सबको छोड़ करके गोपियों जैसा एकमात्र कृष्ण प्रेम के लिए रहे, कृष्ण के सुख के लिए रहेंगे। दुष्ट, ये बहुत दुष्ट है, कितना हो गया, ये तो हो जाए दुष्ट आर्ग पथ निज परिजन, दुष्ट दुष्ट बने ये छोड़े नहीं जा सकते। ये उद्धव जी उनसे मिलने के लिए आए ब्रज में, तो गोपियों ने कहा हमारा तो कृष्ण से कोई संबंध नहीं, उनकी विवाहित पत्नी तो है नहीं, इसलिए हमारा उन पर कोई विशेष आधिपत्य या ये सब अधिकार तो नहीं है, किंतु यशोदा मैया के रक्त से, दूध से, उनके भावों से शरीर कृष्ण का शरीर बना है, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं। ओ तुम यशोदा मैया और बाप के प्रीति के लिए उद्धव को भेजा, आपको भेजा गया, उनको सांत्वना देने के लिए भेजा गया, किंतु ऐसे माता को पिता को भी कैसे भूल गए, जिन गायों का दूध खा करके आप बड़े हुए और शरीर पुष्ट हुआ, उन गायों को और उन माताओं को भी आप और उन पिता को भी आपने छोड़ दिया, भूल गए, ये बड़ा दुष्टज है। दुष्टज आर्य पथंच हित्वा भेदे मुकुंद पदवीं सुखदे मृमज्ञान, और आर्य पथ को, आर्य पथ किसको कहते हैं, कर्तव्यम आचरण, कर्तव्यम आचरण कामम, अकर्तव्यम अनाचरण, कर्तव्य को करना और अकर्तव्य को नहीं करना, इसको कहते हैं आर्य। इसका जो आचरण करता है, आचरण से यह आर्य हुआ है, जो लोग आचरण नहीं करते उसको कहते हैं अनार्य। इस आचरण युक्त आर्य धर्म को भी उन्होंने, गोपियों ने प्रत्याय किया कृष्ण के लिए, एकमात्र सुख कृष्ण का हो, न धर्मम ना धर्मम सुतगुण निरुक्तं कुलु कुरु भजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या महतनु, अपने परिजन को भी छोड़ दिया, कृष्ण अपने परिजनों को नहीं छोड़ सकते, किंतु गोपियों ने छोड़ दिया, भाई माता पिता भगिनी ससुर सासुरी इत्यादि जितने भी हैं, माता पिता ससुर सासुरी इत्यादि सबको लोक वेद धर्म लोक धर्म जितना देह धर्म सुख धर्म जो कुछ सबको उन्होंने प्रत्याग, ये कौन कराया प्रत्याग, प्रेम, क्यों प्रेम ने किया, ये काम की जो चीजें हैं, काम से पाई जाने वाली भोग, काम के उपभोग की ये सब लौकिक चीजें, उनको सब को प्रत्याग करा देता है काम, क्योंकि वो सर्व शक्ति की बेटी है, वो कृष्ण के सुख के लिए ही काम करेगा, और काम का क्या का काम है, भक्ति को कृष्ण को छुड़ाकर भक्ति को भी छुड़ा देगा काम, और भक्तों को भी छुड़ा देगा सत्संग, और कृष्ण को गोपियों सबको छुड़ा करके और अपने सुख में वो ले जाएगा। यही दोनों में ये अंतर है। आज यहीं तक रहे। वंशा कपुत्रस्य प्रवासिन बुद्धैव च पतितानं पावन पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् नजिमामि त्वया विना इतिभिज्ञाय राजीतं माम्। चतुर्थ परिच्छेद। कल हमने गोपियों के प्रेम के संबंध में प्रेम और काम का स्वरूप लक्षण और तथा संलक्षण बतलाते हुए हमने समझाया काम का स्वरूप और तटस्थ लक्षण क्या है, प्रेम का तटस्थ और स्वरूप लक्षण क्या है। काम का स्वरूप लक्षण बतलाया माया की दृष्टि है और विषयों की तरफ में विषय स्वरूप सुख आत्म सुख की तरफ में दौड़ और प्रेम ये स्वरूप शक्ति चित्त शक्ति की वृत्ति है और सब समय कृष्ण के सुख को ही खुद कृष्ण को ही आनंदित करे, उन दोनों का यह बतलाया। तटस्थ लक्षण बतलाया काम का तटस्थ लक्षण क्या है, अपने सुख सुविधा सब समय खोजेगी और जहां सुख रहता है उधर ही दौड़ेगी। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म लज्जा धैर्य ये सबको अंगीकार करेगी अपने सुख के लिए, इसका मूल उद्देश्य अपना सुख है। इसलिए ये कभी यदि मान लिया कि अब इनको यदि लोक धर्म और वेद धर्म को देह धर्म को भी यदि छोड़ता है ये प्रीति छोड़ती है काम तो भी अपना सुख ही उद्देश्य होता है। जैसे गोपियों ने लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म सब त्याग कर दिया। लौकिक रीति में कभी कोई एक लड़की भी किसी से प्यार करती है तो सहज ही अपने माता पिता बंधु सखा घर धन सबको छोड़ देती है, सोचती है कि नहीं छोड़ देती है, यहां तक कि लज्जा को भी छोड़ देती है धैर्य भी छोड़ देती है, यहां तक कि लोक धर्म आद्य धर्म को भी जो उसको भी छोड़ देती है, विवाहिता है तभी उसको भी छोड़ देती है। तो गोपियों की क्या अधिक हुई, गोपियों की विशेषता क्या हुई, नहीं छोड़ती है रोज ही। तो कल भी देखा परसों देखा कितने पेपरों में आते हैं, मोहल्ले में देखते हैं मठों में भी देखते हैं ऐसा होता है तो कुछ छोड़ते। क्या बात इसमें हुई, अपने सुख के लिए ये सब चीजों को छोड़ सकती है, कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के लिए नहीं, गुरु सेवा के लिए भजन के लिए नहीं छोड़ सकती। और ये चित्त शक्ति की प्रति प्रेम का आभास भी रहेगा अभी हृदय में यदि आ गया तो वो कृष्ण के लिए सब कुछ, यही दोनों में एकदम मूल डिफरेंस है। इसी चीज को कल हमने बतलाया लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। आत्म सुख मर्म माने क्या, आत्म सुख ही इनका केंद्र होता है, इनका एम ऑन ऑब्जेक्ट होता है। मर्म माने हृदय, अर्थात ये आत्म सुख माने अपनी इंद्रियों का सुख ही, आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है काम से, इसलिए अपने शरीर को ये मैं समझ करके अपने इंद्रियों के सुख का ही उद्देश्य रखते हैं ये सब। इसलिए दुष्कज आद्य पद निज परिज्ञान भजने करे जतो तारण भक्तों, ये सब को छोड़ करके सब त्याग करी कृष्ण भजन करी करे, ये सब को छोड़ करके वो कृष्ण भजन करता है और काम क्या कराता है इन सब का भी त्याग करा सकता है। एक तो छोड़ेगा नहीं और यदि छोड़ेगा भी तो अपने सुख इनको छोड़े वो उनमें अपना सुख रहा सब समय। कर्ण दुर्योधन इत्यादि में जरासंध में और पांडव में ये अंतर है। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं सब किसके लिए? ये लोग अपने लिए, कृष्ण के लिए भी, कृष्ण के पास ही जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, किस लिए? अच्छा, पांडव लोग कृष्ण को चाहते हैं किस लिए? कृष्ण के सुख, क्यों? इन्हीं के माध्यम से युग धर्म का प्रचार करना है, असुरों का दलन करना है। एक तो ये गौ कार्य और मुख्य कार्य क्या है? प्रति का आस्वादन, कभी पांडवों के प्रति का आस्वादन करते हैं और कभी द्रौपदी का, कभी कुंती का, कभी अर्जुन भीम नकुल सहदेव के प्रति का आस्वादन करते हैं और उसी के द्वारा प्रचार करते हैं। इसलिए इन लोगों का सब कृष्ण सेवा के लिए है। हम लोगों को साधकों को कृष्ण से अभी कोई संबंध नहीं, कृष्ण के लिए अभी नहीं होगा। अब तो सीखो गुरु वैष्णव से, गुरु वैष्णव से सीखो। क्या सीखो? जो कुछ करेंगे इनके लिए करेंगे, इनकी सेवा। अंततः एक तो आदमी जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं जो भोजन की शिक्षा दे रहे हैं उनके तरफ में बढ़ेंगे सब कुछ, किंतु वो भी कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। यदि आदर्श नहीं हुआ तो वो और हम दोनों अंधा को अंधा जैसे ले जाता है वैसे ही किसी भगाड़ में किसी उसमें गिरा देगा। वैसे ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा व्यक्ति होना चाहिए। गुरु भी ऐसा होना चाहिए और शिष्य को ऐसे गुरु का आश्रय लेकर के वहीं से आरंभ करना चाहिए। गुरु नहीं है तो शिक्षा गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करें। ये पुस्तकें भी अपने आप समझ में नहीं आएंगी, कोई भी अपना रहस्य नहीं खोल सकती किसी को। या बस भागवत पढ़ो, वो सब कुछ उसी की है, स्फूर्ति प्राप्त है, दूसरे को नहीं। इसलिए करें, ये गोपियां, गोपियां आदर्श है, ध्रुव है, ध्रुव तारा। सब तारा जितने भी हैं तारे वो अपनी दिशा बदलेंगे और बदलते रहते हैं प्रतीक्षण। ध्रुवी तारा एक ऐसा है जो अपनी उत्तर की दिशा को कभी नहीं बदलता, एक इतना भी थोड़ा सा यदि बदलता है किंतु रहता है उत्तर में, उसके पास वाले उसको सर्किल करेंगे। यहां तक कि सुनते हैं कि सूर्य भी उसी की उसी ध्रुव को लक्ष्य करके और घूमता है, और पृथ्वी और चंद्र इत्यादि जितने तारे और ग्रह समझकर वो सूर्य को, सूर्य सबको लेकर के ये ध्रुव के चारों तरफ। ध्रुव अपना कभी भी यह दिशा नहीं बदलता, जब देखो तब वहीं पर एक ही स्थान पर उत्तर दिशा में, वो भी उत्तर दिशा में, यहां से वहां उत्तर में ही नहीं जाता, यहां कभी यहां कभी वहां नहीं, बस एक जगह भी वो नहीं बदलेगा। हम लोग रात का निर्णय करते थे स्कूल जाने के लिए, घड़ी फड़ी तो थी नहीं उस समय में, घड़ी बड़े बड़े धनी लोग रखते थे, देहातों में किसी के घर पर एक घड़ी नहीं, उस शहर में हो तो हम लोग ध्रुव तारा के चार तरफ में जो सात जो ऋषभ तारा उसको देख करके कहां पर कब है उसे हम लोग लगा, और एक तीन तीन तारे एक लाइन में उसको देख करके ये सब रात्रि से करते, उत्तर किधर है उसी से। अभी तक जहाज में भी ऐसा ही है कंपास के द्वारा,
तो तारा के माध्यम से सब करते।
तो हम लोगों का ध्रुव तारा क्या है? गोपी प्रेम, यही गोपी प्रेम तारा, उसी को लक्ष्य करके अपना बनाए। साधन समय में गुरु वैष्णव के प्रति चलते चलते और उनके निर्देश में धीरे 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 साधन में वो प्रति आए, पहले गुरु इत्यादि के प्रति रहेगी, वो साधन के प्रति आएगा, निष्ठा तक रहेगा साधन में, रुचि भी साधन तक रहेगी, और इसके बाद में चला जाएगा आसक्ति के समय में, दो भाग हो जाएगा, एक होगा साधन के प्रति और एक हो जाएगा साधन के प्रति, उसमें कृष्ण के प्रति हो जाएगी। कृष्ण माने वहां पर कृष्ण और उनके परिकर, और धीरे धीरे आगे। इसलिए गुरु की सेवा की इतनी महिमा बतलाई गई है, किंतु गुरु भी भोगी नहीं होना चाहिए, भोगी नहीं, कृष्ण के लिए सब समय अर्पित। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन, सर्व त्याग करी सब, मैं समझता हूं कि कुछ भी त्याग न करें और अपना सुख केवल त्याग कर दे तो वो सब कुछ है। सब कुछ लेकर के भी यदि अपना सुख नहीं कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ रखते हैं तो ये महान त्याग। और सब कुछ त्याग कर दिया, अपने सुख को नहीं त्याग किया जो हम लोगों की वर्तमान स्थिति है, स्त्री त्याग कर दिया, पुत्र त्याग कर दिया और सब धन संपत्ति भी घर सबको त्याग कर, किंतु अपना सुख जो मन के अंदर में है ये प्रतिष्ठा भी उसी के अंदर, ये सब त्याग नहीं हो पाता। जब ये सब कुछ कृष्ण के लिए गुरु के लिए अर्पित हो जाएगा तब तो काम बनेगा। इसी चीज को सीखना है। तो कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम समान। अभी हम लोग पाठ सुन रहे हैं। अच्छा, पाठ में हम लोगों को सुख और दुख दोनों होता है। जो सुख होता है हम पाठ सुनते हैं, अब इसको कैसे रिकाउंसाइल करेंगे, कैसे करें? हम पाठ सुन रहे हैं तो इसमें कृष्ण का क्या सुख है और इसमें जो सुख हमें हो रहा है जिससे कृष्ण को सुख हो रहा है कैसे समझाएगा? साधारण कनिष्ठ अधिकारी इसको कभी भी रिकाउंसाइल नहीं कर सकता, मध्यम अधिकारी इस पर विचार कर सकता, अध्ययन से विचार नहीं कर सका, यथार्थ में मध्यम अधिकार में आया ही नहीं, जितना भी मान करे नहीं आया, इस पर विचार कर सकते। एक साधारण कनिष्ठ अधिकारी भी रहेगा तो ये तो विचार कर सकता है, जबकि उसको मध्यम अधिकार में जाना तो ये विचार तो करेगा, हम पाठ सुन रहे हैं, पाठ सुनने से हमको ये सब रीति भक्ति की कैसी साधन भजन करना चाहिए हमको मालूम होगा, तब तो कृष्ण की सेवा करेंगे इसलिए पाठ सुन रहे हैं। यह किसके लिए हो गया? कृष्ण के लिए हो गया ना। हम पाठ यहाँ जा रहे हैं, हमारा समय बीतता नहीं है घर में, इसलिए जाता हूँ, समय बिताता हूँ, बड़ा अच्छा बीत जाता है हमारा समय, तो ये क्या हो गया? तो ये काम हो गया। और अब कौन आदमी कौन किस लिए कर रहा है विचार करके देखेंगे तब मालूम होगा। हम प्रसाद सेवा कर रहे हैं, अधिकांश हम लोग अभी नहीं समझते, पेट भर जाए अच्छा लगता है इसलिए भूख लगी हुई है, शरीर में शक्ति है, किंतु क्यों? गोपियों को टारगेट कब बनाना होगा सब? उनका जैसे भोजन इत्यादि श्रृंगार अभी बतलाएंगे, जो उन्होंने तो कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनका श्रृंगार किस लिए होता है? आज ये हमारा जो शरीर है अब मेरा नहीं है, ये कृष्ण का शरीर, इसको स्पर्श करके, इसको देख करके, इसको उल्लसित देख करके उनको भारी आनंद होता है, इसलिए इसको तरह से श्रृंगार करते हैं, तरह तरह से श्रृंगार करते हैं और आईना में देखते हैं कि ये कृष्ण को कैसा लग रहा होगा, लगेगा उनका वो कैसे, और हम अपने लिए मेकअप कर रहे हैं घंटों आईना लेकर के तिलक रचना कर रहे हैं एक घंटा लग गया, बड़े अच्छे तरह से कला कौशल के साथ में कर रहे हैं, मोटा भी हो, यहां तक भी हो, सुंदर हो, देख करके कर रहे, लोग देखेंगे जहां ये ठीक है, तो ये क्या हो गया? काम हो गया। हमारे भक्ति में ये सहायक होगा, हम कृष्ण के लिए मंदिर बना रहे हैं, गुरु वैष्णव और इसके बिना भजन नहीं होगा, इसलिए हम कर रहे हैं भोजन, इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी तरह से हम उतना ही भोजन करेंगे परिमित रूप में आहार, जितना कि हमको अधिक नींद न आए, शरीर में बल वीर्य इत्यादि अधिक न आए, दूसरे के संग की आवश्यकता न रहे। रूप रघुनाथ गोस्वामी ने जिस प्रकार से इसको लिया, युक्त आहार विहारी, अधिक यदि इतना भी हुआ और अपने सुख के लिए यदि वहां पर खीर दे रहा है और वहां पर साख दे रहा है और साथ में भी लवण भी नहीं है, तेल भी नहीं, और एक तरफ में राबड़ी और खीर है, हमको क्या चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो उसका मतलब है ये प्रसाद में उसकी रुचि नहीं है और उसका कल्याण नहीं होगा। जीवन धारण करने के लिए हमको जो जरूरत है, महाप्रसाद सभी बराबर है, ऐसा समझ करके उसके प्रति निष्ठा रहेगी। और जीवन निर्वाह करने के लिए अधिक काम न हो, विलास की भावना न हो, स्वसुख पोषण की दृष्टि न रहे, अपने शरीर के जीवन के निर्वाह के लिए इस प्रकार से भजन की पुष्टि के लिए इसको खाना है, प्रसाद ग्रहण करना है। अनेक तो प्रसाद पाकर के ही लोगों में काम भावना है, मरते हैं सब, इसलिए ये सब का विचार करते हैं। कैसे इसका हम गोपियों जैसा टारगेट बनाए, गोपियां सब रसोई बना रही हैं, पतियों को खिला रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, जहां बंसी की ध्वनि आई और सुना कि कृष्ण बुला रहे हैं, बड़े आकुल होकर के पुकार रहे हैं, नहीं तो नहीं जाती, आकुल होकर के कृष्ण पुकार, जब उनकी यह ध्वनि उनके कानों में आई और समझा कि कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं मिलने के लिए, बस रोटी पकाना छोड़ दिया, पतियों की सेवा भी छोड़ दी, श्रृंगार करना छोड़ दिया, जितना भोजन करना छोड़ दिया, वो क्या होता है दलिया वो हाड़ी में लग गया, गंदा आने लगी, उसको छोड़ करके चल पड़ी, नुपुर जो पहन रही थी याद ही नहीं, बस चलते चलते गले में डाल दी। इस प्रकार से अब साधन अवस्था में हम इसका उपयोग कर लेंगे। एक छोटी सी बात लेकर के हम चलेंगे, समर्पित आत्मा होकर के गुरु के चरण में यदि कृष्ण के प्रति नहीं आते तो गुरु वैष्णव को ही लो, यदि वैसे योग्य है उनकी सेवा में तन्मय रहना, भजन साधन के अनुरूप जो जो कि अब जीवन हमारा अपना नहीं रहा राधा कृष्ण के चरणों पे, अब उनसे बात उनके निजन है गुरु वैष्णव, उनके लिए अभी जीवन धारण करते हुए धीरे धीरे इस चीज को बदल देंगे, कहां राधा कृष्ण, इस तरह से साधन भजन हो, साधन भजन माने हरे कृष्ण मर गए खाते पीते आराम के साथ में और शयन करते हुए, नहीं इस लाख जन्म में भी नहीं भाई होगा, इतना सहज नहीं है, खूब अच्छी तरह से समझ बूझ करके विचार कर ले चित्ते पवित्र, चैतन्य महाप्रभु दया करो विचार, ये सबको विचार करना पड़ेगा, क्यों ये सब दिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ने से गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, तुलसी की रामायण पाठ करना चाहिए, सात सात दिन का एक एक दिन अखंड हो रहा है, उसमें एक बात भी नहीं दिया उपदेश, और पढ़ गए 10 बार 20 बार, हमने 108 बार तुलसी की रामायण का पारायण हमने तो कराया है, हमसे अब बाधी कौन भक्त हो सकता है, एक बार भी नहीं पारायण हुआ, एक लाइन एक अक्षर तक नहीं हुआ, यदि ये सब चीजें नहीं है, इसलिए भाई आप लोग भी हम लोग भी सभी चेष्टा करें, टारगेट गोपियों का प्रेम रख करके एक सुई भी उठाएं तो उसे देखें कि कृष्ण हरि गुरु वैष्णव और राधा कृष्ण महाप्रभु जी इत्यादि नित्यानंद ये प्रसन्न होंगे कि नहीं इस काम से, यदि मुझको खाने में टेस्ट लग रहा है तो राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं आ गुरु जी, ये विचार करो, यदि अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी प्रकार से भजन करने के लिए हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो इसे जरूर राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे भजन के लिए उपयोगी जान करके ये ले रहा है, और अपने लिए तो कृष्ण जान जाएंगे कि नहीं या गुरु जान जाएंगे कि नहीं, ये किसके लिए कर रहा है, ये तिलक किस लिए लगा रहा है, गले में मोटा मोटा कंठी बांध रहा है और सब जो लाल कपड़े पहन रहा है या वैराग्य धारण कर रहा है किसके लिए, वो इतना नहीं समझेंगे कृष्ण, वो तो साधारण आदमी भी समझ जाता है, इसलिए अच्छी तरह से टारगेट बना करके इस प्रकार से चलना चाहिए, साधकों को भी मठ में रहने का ये तात्पर्य है, सुनेंगे विचार करेंगे वैसा ही आचरण करेंगे, यहां के कहे कृष्ण दृढ़ अनुराग सख्त भौत वस्त्र जनो नाही कोनो दार, इसको कहते हैं कहे कृष्ण दृढ़ अनुराग, इसको कहते गोपियों का दृढ़ अनुराग है, हम लोगों का भी अनुराग ही नहीं, मध्यम अधिकारी जो वैसे भक्त हैं उनका अनुराग है किंतु दृढ़ नहीं, ना ही जाने दृढ़ है ना, हाँ श्रद्धावान
नहीं,
नहीं शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़, नहीं तो शास्त्र युक्ति एकदम जानेंगे नहीं तो भजन क्या करेगा, ऐसा दृढ़ अभी नहीं हुआ है। कोई आकर के प्रश्न कर दिया हो सकता है उसका रिकॉन्साइल कर सके, किंतु वो इतना वो भजन उसमें रुचि हो अब वो छोड़ेगा नहीं, हो नहीं सकते, हार गए हैं हार जाएंगे किंतु तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ऐसा होगा। इसको कहते हैं दृढ़ अनुवाद। इसके लिए गोपियों का आदर्श, गोपियों हम लोगों के लिए नहीं कह रहे, ये मत समझ लेने जो हम लोगों के लिए कर, यहाँ के कहे गोपियों के ईश भाव को जो तटस्थ और स्वरूप लक्षण में सब समय कृष्ण के सुख को चाहती है, ऐसे ही किसी का हो तो समझोगे उनका दृढ़ अनुराग। रूप गोस्वामी का अनुराग कैसा है? रघुनाथ दास गोस्वामी का दृढ़ है, ऐसे ही सब हमारे सब काम होता है राय रामानंदी इत्यादि, ये सब दृढ़ अनुराग। या के कहे कृष्ण दृढ़ अनुराग, यह लक्षण मिल जाएगा जो कहा वो स्वरूप लक्षण तो मिलेगा नहीं, और तटस्थ लक्षण भी यदि सब त्याग का आता है, जैसे कि कोई एक बदमाश लड़की यह आर्य धर्म और अपने माता पिता सबको छोड़ करके दो दिन के सुख के लिए बस छोड़ दिया, ये तो त्याग उसमें भी देखा जाता है, हम जेल में जाएंगे, हम मर्डर में जाएंगे, हम कूद जाएंगे किंतु इनको नहीं छोड़ेंगे, तो ये क्या हुआ अपना सुख तक बस। यह के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग स्वच्छ भौत बस्ते जेनो नहीं कोनो दाग, जिस प्रकार से स्वच्छ एकदम बिना दाग का कोई कपड़ा हो सफेद कोई दाग, ऐसे गोपियों का ये। बल्कि मैं कहता हूं इसमें और यदि ये होता थोड़ा सा रंग लग गया होता लाल पूरा पूरा लाल, ये तो अनुराग का चिन्ह है, ये तो सफेद माने कूड़ा है, तो गोपियों का प्रेम कूड़ा है, गोपियों का तो प्रेम कूड़ा नहीं है, अनुराग का रंग होता है लाल जो श्रीमती राधिका जी ग्रहण कर, कोई दाग नहीं है, बस एक दाग है कृष्ण काला दाग है, सब समय जहां देखो उस अनुराग में भी काला काला उसमें कोई है आभास, स्वच्छ वस्त्र बहुत वश है नहीं कोनो दाग, अर्थात काम का कोई दाग नहीं है, प्रेम एकदम शुद्ध अनुराग है, कोई काम का दाग नहीं, कभी भी कृष्ण के लिए नहीं होता, उसी को यहां पर फिर बतला रहे हैं। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम के और प्रेम के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों में बहुत अंतर है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम कैसा है अंधतम अमावस्या की घनी अंधाई अंधेरी रात, और प्रेम है निर्मल भास्कर बिना मेघ से छादित सूर्य के समान, जेठ की दोपहरी में बिना मेघ का जैसे सूर्य चमकता है, ऐसा है प्रेम, और काम है वर्षा काल की अंधेरी मेघों से ढकी हुई अंधकार रात, अंधकार रात है। किस लिए बतला रहे हैं? जहां पर प्रेम होगा वहां पर काम नहीं होगा, जहां अंधेरी रात है वहां पर सूर्य नहीं, और जहां सूर्य है वहां अंधेरी रात है ना, जहां सूर्य रहेंगे रात होगी नहीं हो सकती, वहां पर थोड़ा सा भी अंधकार नहीं होगा, और किधर में जहां अंधकार है परिपूर्ण रूप से वहां पर सूर्य का कोई भी चिन्ह नहीं है, सूर्य नहीं, तो जहां काम है अपने भोग की लालसा है, अपने सुख की लालसा है, इंद्रियों की सुख की इतनी भी लालसा है, समझो जो प्रेम रूपी सूर्य वहां नहीं है, एकदम अच्छी तरह से समझ। यदि कृष्ण की किसी लीला के पढ़ने से काम की उद्दीपना होती है मत पढ़ो, समझो ये काम बर्बाद हो रहा है, अभी हमारे अंदर में भक्ति नहीं, और यदि कृष्ण की सेवा करने की गुरु वैष्णव की सेवा करने की उसे प्रवृत्ति बढ़ती है तो ठीक है चलने दो, ये सब चीजें लक्षण के द्वारा समझना चाहिए। जहां पर प्रेम है अतएव गोपी का निर्णय ही काम गंध, गोपी में काम की तो बात क्या, गंध भी नहीं है। जैसे मैं गया किसी वो जहां रखता है रखते हैं किरासन ऑयल मिट्टी का तेल, फिर तो लगा नहीं, किंतु उसमें घर में गया जूता पहन करके गया था या चप्पल चप्पल में लग गया, लगेगा कि नहीं। और मैंने हरिकेन में या किसी चीज में मैंने किरासन तेल डाला, जब डाला तो किसी ने कुछ हो सकता है कि उसका गंध थोड़ा सा इसमें बास आ जाए कपड़ों में, वो बास आ जाए, इसको कहते हैं गंध। गोपियों के शुद्ध कृष्ण प्रेम में इसका कोई भी काम का कोई गंध ही नहीं है, कोई भी गंध नहीं। अतएव जैसे मान लिया कि हम जा रहे हैं, अजामिल जा रहा था ब्राह्मण का एक छोटा सा लड़का, विवाह अभी नया हुआ था, माता पिता की खूब सेवा कर रहा है, वेदों का अध्ययन करता है, शाम को अग्नि में हवन करता है, वेद इत्यादि पढ़ रहा है, जनेऊ कंधे पर बहुत सुंदर सुकांत अच्छा भी, पिताजी की सेवा के लिए गया और वहां से लकड़ी ला रहा है उनके यज्ञ के लिए हमन के लिए, और गया दूर से किसी एक कुदृश्य को देखा, शराब पीते हुए एक लड़का लड़की को देखा, और देख करके लौटा तब क्या चीज लेकर क्या, लकड़ी आई ना क्या आई, एकदम चित्त मलिन हो गया ना, कोई रंग की जरूरत नहीं, रंग तो छूट सकता है किंतु वो रंग जो चढ़ा नहीं छूटा, ये कहते हैं गंध। इसलिए गोपियों के प्रेम में काम की कोई गंध तक नहीं है, चित्त एक ऐसा चीज है जो इस चीजों में रंग सकता है, इसलिए भक्ति में रंगे ऐसा कोई कर, इसीलिए ये सब साधन है, हरि कथा सुनना, कृष्ण का लीला चरित्र सुनना, महाप्रभु जी का लीला चरित्र सुनना, जितने दाग हैं सबको ये काट करके खत्म कर देंगे। अतः गोपीर नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, कृष्ण के साथ में ये जो संबंध जो किया ये संबंध कृष्ण के सुख के लिए, कुछ भी प्रेम में दो चीजें पालू है, एक निगेटिव और एक प्रवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति है और एक निवृत्ति है, तन मन वचन की जातनी सारी चेष्टाएं हैं कृष्ण के लिए हो, कृष्ण के लिए ये चेष्टाएं अनुकूल रूप में हो, किंतु इसके साथ में ये देखना है कि निवृत्तात्मक भी होना चाहिए। निवृत्तात्मक क्या, जो नहीं करना है वो मन मत करे, जो भक्ति के लिए विरोधी चीजें हैं प्रतिकूल कोई आचरण भक्ति का न करे, अपराध इत्यादि न करे, अनर्थ न हो, ये सब भी विचार करना है, ये निवृत्त्यात्मक है। प्रतिकूल का वर्जन, अनुकूल का घर बार छोड़ना, आसक्ति छोड़ना, ये भक्ति कृष्ण का सुख नहीं है, सुख इसमें है छोड़ करके कृष्ण से प्रीति करते हुए उनकी सेवा करना, ये मूल चीज है। यदि किसी ने घर छोड़ दिया, स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ दिया किंतु कृष्ण की सेवा नहीं है, तो क्या हुआ, जीरो जीरो। घर बार गोपियों का छोड़ना और ये सब कुछ देह दैहिक सब कुछ छोड़ना यदि होता किंतु कृष्ण की सेवा नहीं होती तो उसका क्या मूल्य था, हाँ कुछ मूल्य, कुछ भी मूल्य। ऐसे तो कितने आदमी छोड़ देते हैं, घर से बाहर कर दिए जाते हैं, लाखों घटनाएं ऐसी होती हैं, वो भक्ति नहीं, भक्ति कब होगी, अनुकुल्येन कृष्ण अनुकुल्यम, कृष्ण की सेवा हो। ये गोपियां जो इनको छोड़कर के कृष्ण से मिलकर के कृष्ण को की सेवा करती हैं और सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बस यही भक्ति है ये चीज, किंतु बिना छोड़े भी नहीं होगा, अपने सुख की लालसा रहेगी नहीं होगा। अतः गोपी गणे नहीं काम बंध, कृष्ण रूप सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, ये सब कारण है इसलिए कि हम लोग भी धीरे धीरे इधर ही हम लोग चले, यत्ते सुजात चरणं वरुहं तनेषु भीता सनैय प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनात्मं मतसि तदधतेन किंचित् कुरुपादिभ्रमतिभिर्भवदाजुषां।
यत्ते सुजात, अब उसको पुष्टि के लिए ये बतला रहे, केवल मात्र उनके समस्त क्रियाओं में, चलने फिरने उठने बैठने कृष्ण के दर्शन करने में, घर में रसोई बनाने के समय, जितनी भी देह दैहिक जो कुछ है सब कृष्ण के सुख के लिए। हम लोग हर बात छोड़ करके या छूट गया आए, हम लोग को क्या अब करना चाहिए? बस ये देखना चाहिए सब छोड़ छाड़ करके हमारी प्रवृत्ति और कहीं नहीं लगे। एक आदमी मान ले कि मठ में आया, धनी सा सुंदर सा दिखाई पड़ा या सुंदरी सी दिखाई, बस हम लोग जुट गए उनको प्रसन्न करने, किस लिए? किस लिए उनको प्रसन्न करने में किस लिए लग गए? इसलिए नहीं कि कृष्ण प्रसन्न हो, ये तो उत्तम भागवतों का या मध्यम अधिकारी में जो उच्च व्यक्ति है उन लोगों के लिए है, मत जाओ आग से खेलने के लिए, अभी तुम लोग आग से सेवा नहीं कर सकता, खूब समझ बूझ करके। इसलिए छोटे हरिदास ठाकुर चावल मांगने के लिए गया और महाप्रभु जी ने सदा के लिए त्याग कर दिया। यत्ते सुजात चरणं वरुहं तनेषु भीतः सनैः प्रयतति। गोपियों के प्रेम में तनिक भी स्वसुख की वासना नहीं, अपने सुख की वासना नहीं, एकदम कहीं भी किसी भी क्रिया में, चाहे वो श्रृंगार अपना हो, चाहे रसोई बना रही है, पति की सेवा कर रही है, या कुछ भी कर रही है, कृष्ण से मिलने जा रही है, कभी नहीं है। इसमें जिसको हम लोग काम समझ रखते हैं उस काम को भी यहां पर ले आए, काम साम्य के वजह से, काम के समान लगने वाला जो प्रिया प्रियतम के साथ में मिलने का भाव उसमें भी दिखला रहे हैं, जिसमें दोनों जगत के नायक नायिका किस रूप में मिलते हैं, नायक नायिका मित्र कहो, माता पिता भाई बंधु, किस लिए परस्पर मिलकर के आनंदित होते हैं? माता से मिले बड़े प्रसन्न हुए, मैया प्रसन्न है तो मैया से मिलकर के तुम किस लिए प्रसन्न हुआ, विचार करके खूब गाढ़ रूप में देखो, मैया ने जीवन भर हमारी कितनी सेवा की है, हमें बचाया है, लाड़ पार किया, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ हम होने जा रहे हैं, ये दिखलाते मैया प्रसन्न, किंतु अपना ही प्रसन्नता मूल उसमें है, ऋण चुका रहा है इसे। और आजकल तो ये भी सब निकल चला जा रहा है, ये सब संस्कृतियां ही नष्ट हो रही। कृष्ण गोपियों के साथ में मिले, कृष्ण पूर्णिमा को, शारदीय पूर्णिमा को बंसी बजाई, गोपियां आई, सब गृहकृत्यों को छोड़ छाड़ करके आए, लोक धर्म देह धर्म सब कुछ को छोड़ करके आए, प्रमाण कैसे होगा? इसलिए राजपंच अध्याय के 31वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इसको बता रहे, यत्ते सुजात चरणाम्बदु, एक सुंदर सात कमल है अभी खिला है, उसमें सुंदर सुगंध है, मीठी मीठी गंध, भौरे भी उस मधु के लोभ से उस पर गुंजार कर रहे हैं। सुजात माने क्या? सुजात माने जन्म किया, सुजात माने अच्छी तरह से, कमल के लिए जात, कृष्ण के लिए जात, कृष्ण के चरण कमलों के लिए कर, सुजात कैसे होगा? कमल यदि मन सरोवर में एक खिल रहा है और एक कहीं दूसरी जगह खिल रहा है, गंदे पानी में या कीचड़ में या किसी गड्ढे में खिल रहा है, दोनों में कौन सा बड़ा और कौन विकसित और कौन सुंदर सुगंध से युक्त होगा? मानस सरोवर, क्यों? अत्यंत पवित्र वहां का पानी, कोई भी मलिनता नहीं, और उसमें नैसर्गिक कुछ ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जिसमें भरपूर सुगंध इत्यादि सब उसमें है, स्वच्छंद रूप से भौरे भी वहां पर आए, सब प्रकार से वो उसको प्रफुटित होने का सुयोग है। इसलिए वहां पर जो कमल बड़ा बड़ा सतदल, यहां पर एक दल होगा, दो दल हो सकता है, अधिक तीन दल, अधिक नहीं होगा, एक ही दल होता है। सतदल कहां होता है? कृष्ण के समय में जमुना में होता था सतदल, राधा कुंड में सतदल होते थे। अब कहां होता है? एक भी कमल है, एक भी कमल है। कभी हम जाते हैं नंदगांव में, एक बार हम लोग गए थे नंदबाग में, हमारे साथ में नारायण प्रभु थे, याद आती है। वहां पर कमल दो चार खिले हुए थे, दो ही चार, बरसात का दिन था, तो देख करके उनका चित्त लुप्त हो गया, कहा जैसे महाराज जी को ये लेकर के हम मैं दूं, तो इसलिए पानी में वो जम ही उतरे तो इतना डूब गए कमल हाथ भी नहीं आया, बस किसी प्रकार से उनका हाथ पकड़ कर निकाला किंतु एक ही दल न, एक ही दल, और वो भी पूरा खिला हुआ नहीं, पूरा सुगंध नहीं, संभव नहीं है। इसलिए सुजातु कहां से ये निकले, कृष्ण का ये चरण कमल कहां से निकला है? यशोदा मैया सुजात, यशोदा मैया के घर में उनके हृदय से ही निकला हुआ है ना कमल। उनका हृदय कैसा है? कैसा उनका हृदय? इसीलिए उन्होंने कितना, यदि उनकी तपस्या भी ले लो द्रोण और धरा के रूप में, तो भी ले लो, और ये नित्य ही उसमें सुंदर सुंदर कमल खिलने योग्य, उनका सुंदर प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, उसमें सुजात। तो यत ते ते अंबरुहम सुजात चरणाम्बरुहम, तुम्हारा ये जो चरण कमल है ये कैसे है? सुजात, सुंदर रूप से, अत्यंत सुंदर सुगंधों से भरपूर, अत्यंत कोमल, अत्यंत मीठा, ऐसा तुम्हारा ये जो चरण कमल है, अत्यंत सुकोमल, यहां पर होगा सुजात माने सुकोमल, कोमल जो चरण है। भीता शनई प्रिय दधी मई कर्कशेषु, गोपियां कहती हैं इतना कोमल है जिसका पृथ्वी में या कहीं भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, अपना उदाहरण वो खुद ही उदाहरण, जगत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। क्या करेंगे हम इसको धारण करना चाहती हैं अपने सींग में, धारण नहीं कर पाती, इतना कोमल, और हम लोगों का सी अंग कैसा है, कठिन है, इस पर हम नहीं रख सकते। इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण चाह रहे हैं जो मैं रखूं, कृष्ण को इससे प्रसन्नता होगी, गोपियों के सिंगों का उनका चरण स्पर्श करे, हाथ स्पर्श करे, अंग, ये कृष्ण चाहते हैं। जब कृष्ण की इच्छा उन्होंने देखी, अजर ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा ही है तो ठीक है, किंतु तब ही कहती हैं भीता शनई प्रिय दधी मही कर्कशेष, प्रिय चरण कमल हम लोगों का कैसा है? प्रिय है, और हम लोग चाहते हैं उसी का प्रिय, किंतु डरती हैं जिसे कहीं चरणों का प्रिय न हो करके हमारे कर्कश कठोर सी अंगों में वो उनका जो कमल से कोमल जो चरण कमल है कहीं उसमें कोई काठिन्य खरोच इत्यादि न हो जाए, हम इसलिए डर डर करके इसको। किंतु क्यों रखती है? क्यों कहते हैं कि उनका आदेश ऐसा, उनकी भावनाएं ऐसा, उसी में प्रसन्न है, तुम उनके तरफ में कुछ क्रोधित हो रही है, क्यों मान क्यों कर लिया है? क्योंकि वो चाहते हैं, किंतु कहेंगी नहीं कि वो कहते हैं, यहां पर भी ये नहीं करें जैसे तुम ही ने कहा, किंतु भाव यही है, स्वाभाविक रूप में अपने लिए नहीं, उनका ऐठना, उनका जो कुछ करना है या ये भी करना है, उनके सी अंगों को, सी चरण कमल को या सी चरण हस्त को अपने सिर पर रखना इत्यादि, ये सब कृष्ण चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं अपने लेने। वो भी हम डर डर करके, कर्कश हम लोगों के सी अंग कर्कश हैं, आपके चरण कमल कैसे हैं? अत्यंत सुकोमल, इसलिए कहीं उसको कष्ट न हो जाए, इसलिए हम डर डर करके उसको रखती हैं। देखो यहां पर जो कृष्ण को चरणों में थोड़ी सी कर्कशता लगेगी, गोपियों को इतना भी ध्यान है, ये यहां पर कहने का था। इसलिए हमारे किसी भी व्यवहार से गुरु वैष्णव को यहाँ पर प्रैक्टिस में भजन साधन के समय तनिक भी कोई भी मन में शरीर में अंग में वचन में किसी प्रकार से कोई भी कर्कशता उनको न हो, ये हम लोगों के साधक के लिए, और उन लोगों के लिए क्या है उनके लिए ये स्वाभाविक है। इसलिए टारगेट स्थिर कर रहे हैं, हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए ऐसा गोपियों जैसा। तेना तमन 88 उन्होंने देखा जो कृष्ण बन बनों में घूम रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, वहां पर हमारा सिंह तो उतना कठोर नहीं है जितना कि एक कंकड़ी है, पत्थर है, जितना कांटे हैं। तो जब वो वनों में जब गैयों के पीछे पीछे भागते हैं, ककरीली जमीन पथरीली जमीन पत्थर चुभ जाते हैं, पत्थर इत्यादि कांटे भी बावला के इतने बड़े बड़े और दूसरे दूसरे सब, या कुछ ऐसे भी कांटे हैं जिसमें हजारों कांटे रहते हैं एक एक उसमें, और जहां उस पर रखा ना बस एक साथ में पकड़ लेंगे, कपड़े भी पकड़ लेते हैं चारों तरफ में, छोड़ते नहीं, और यदि छोड़ा तो उसके कांटे उसी में रह जाते हैं और ऊपर से छोटे छोटे और पिंच 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 सब कर रहे थोड़ा थोड़ा कष्ट, ये कार्य कर रही है जिसे हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तीना वैसे सुकोमल चरणों से आप जिस पर हम इतना कोमलता के साथ में रखते हुए डरती हैं उसको कष्ट न हो, और उसी चर सुकोमल चरणों से आप वन में गईयों के पीछे पीछे आप ककड़ीली पथरीली जमीन में कांटों से भरे हुए जिन में आप चलते हैं कृपादि भी आपको कष्ट नहीं होता। भी भ्रमति धिल होता जुसा आपके लिए हमारे चित्त खेद से भ्रमण करता है, यदि होता कष्ट होता तो आप क्यों जाते, किंतु फिर भी आप जाते हैं। आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है मन के साथ में कली लतांग मना कांत गच्छति। हम लोग किसी काम में बारीकी से विचार करते हैं कि हमने ये जो किया यह काम जो किया ये गुरु वैष्णव और भगवान के प्रीति के लिए हो रहा है नहीं, या उनके लिए कांटे चुभेंगे या क्या होगा क्या होगा, विचार करते हैं चौबीसों घंटा ये सब विचार करेंगे तब तो कृष्ण में ऐसी भक्ति हो, पहले विचार करो अच्छी तरह से। आत्म सुख दुख गोपीर नहीं विचार, अपने सुख और दुख का विचार गोपियों का नहीं होता, मध्यम अधिकारी तक सभी